الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کے اندر کچھ زائد سنتیں ہیں جو پورے ہفتے میں نہیں ہیں. اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے. اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اس سنت کے اوپر عمل کرنے کا تعلق ہمارے ائمہ کرام اور علماء کرام سے ہے, لہذا حضرات علماء کرام کو ائمہ کرام کو ہر جمعہ کے دن بہت پابندی کے ساتھ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. عجیب اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ جو جمعہ کے دن کی دو سنتیں ہیں سجدہ اور سورہ دہر, دونوں کے اندر دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت اللہ نے بیان فرمائی. سورہ الف لام میم سجدہ میں دین کا کام کرنے والوں کو فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. یہ سب دین کا کام کرنے والوں کے لیے زبردست اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی ہے کہ آدمی قوم کا ذمہ دار کب بنتا ہے, قوم کی ذمہ داری کا حق ادا کرنے میں انسان کو جو حالات آتے ہیں ان حالات کے اوپر آدمی کو صبر کرنا پڑے گا. دین کا کوئی بھی کام آپ اٹھا کر کے لے لو, اس کے اندر صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. آدمی صبر کے ساتھ دین کا کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دین کا کام وجود میں آئے گا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے اندر جو حالات آئے, جو تکلیف آئے, جو مصیبت آئے, اس کو سہن کرو اور سہن کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا کام چالو رکھو. شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو ستائیں گے, پریشان کریں گے تاکہ آپ دین کا کام چھوڑ دیں. بعض مرتبہ ہمارے دین کا کام کرنے والے علماء تبلیغی ساتھی اکتا جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں, ویروت کر رہے ہیں, لوگ ہمیں ستا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. वो शैतान के एजेंट लोग इसीलिए सताते हैं ताकि हम दीन का काम करना छोड़ देवे। लेकिन हमें नबियों के तरीके पर अमल करके अगर ऐसे हालात आवे, मुश्किलात आवे, तो सारी चीजों को सहन करके, बर्दाश्त करके दीन के काम में लगे रहना है। जब लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी जात से अल्लाह ताला दीन का फायदा पहुंचाएंगे। इसीलिए ये सूरह सजदा के अंदर बड़ी बात फरमाई, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, के अइम्मा के माने कौम के पेशवा, लीडर, जिम्मेदार। ये आदमी कब बनता है? जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खुद भी चलता है और दूसरों को भी चलाता है। खुद भी अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल करे, दूसरों को भी अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल कराए, और जो मुसीबत और हालात आए उसके ऊपर सब्र से काम लेवे। देखिए, अल्लाह ताला से कभी मुसीबत मांगनी नहीं है, मांगनी तो है अल्लाह ताला से आफियत। आफियत का मतलब क्या? सब ठीक ठाक खैरियत से चलता रहे, उसको आफियत कहते हैं। तो अल्लाह से मांगना यही है कि सब ठीक ठाक खैरियत से, आफियत से चलता रहे। लेकिन कभी कुछ ऊंच नीच आ जावे तो उसको हम सहन करने वाले बने तो अल्लाह ताला हमारी जात से दीन का काम लेंगे। आगे फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूकिनून। अल्लाह के अहकाम और कुरान की आयतों के ऊपर वो यकीन रखते हैं। पहले हमारे अंदर यकीन होना चाहिए कि जिस दीन पर हम अमल कर रहे हैं, जो दीन हम दूसरों को सिखला रहे हैं, ये बिल्कुल सही है और उसी के अंदर हमारी कामयाबी है। ये यकीन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हमारी जात से दीन का काम होगा। इसीलिए सारे दीन का काम करने वाले हमारे भाई, चाहे मकतब मदरसा पढ़ाते हो, इमामत कराते हो, दावत व तबलीग का काम करते हो, समाज सेवा का काम करते हो, और कोई सोशल वर्क करते हो, सबके लिए यही एक बुनियादी बात है, पाये की बात है कि दीन के काम में, खिदमत के काम में जो हालात आए उसके ऊपर हम सब्र के साथ जम करके काम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी जात से लोगों को फायदा पहुंचेगा और अल्लाह ताला हमारी जात से बहुत काम लेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। इसमें वकानु भी आयातिना योकिनून पर एक अहम बात समझो कि अल्लाह की आयतों पर हमारा खुद का यकीन हो, ये बहुत बड़ी जरूरी चीज है। अब मैं आपको बतलाऊं कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि सुबह के अंदर जो काम होता है उसके अंदर अल्लाह बड़ी बरकत रखते हैं। सुबह के काम के अंदर बड़ी बरकत है अल्लाह की तरफ से। आप सुबह सुबह के अंदर दुकान पर बैठिए, इंशाल्लाह बरकत होगी। सुबह सुबह के अंदर कोई भी काम कीजिए उसमें बरकत है, ये हदीस में वादा है। अब सुबह के वक्त में बरकत का वादा है तो कुरान मजीद वो भी बरकत वाली चीज है। अब सुबह सुबह के अंदर बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह उस पढ़ने पढ़ाने के अंदर भी अल्लाह बड़ी बरकत देंगे। देखिए दोनों चीज को जमा करो कि इधर फरमाया वकानू भी आयातिना यूकिनून, इधर फरमाया कि सुबह जो काम करोगे उसमें बरकत होगी। अब इससे मालूम हुआ कि सुबह के अंदर जो मदरसे की तालीम होती है, मकतब की तालीम होती है, उसके अंदर अल्लाह ताला बड़ी बरकत रखते हैं और उसमें बड़ी खैर और बड़ी भलाई है। अब इसके ऊपर हमारा यकीन कम होता जा रहा है। मुसलमानों के बच्चे सुबह सुबह के अंदर का इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे, सुबह सुबह के अंदर ट्यूशन करने के लिए जाएंगे। वाह, इधर अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं कि सुबह काम में बरकत है और कुरान से बड़ा बरकत वाला कोई काम नहीं हो सकता। अब हम ही हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि सुबह के अंदर उसको इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, ट्यूशन में भेज रहे हैं। तो बस तक फिरुल्ला, फजर की नमाज हमारा बच्चा पढ़े, माँ बाप जल्दी से तैयार करके उनको सीधा मदरसे में भेजे, ये बच्चा मदरसे में आवे, कुरान पढ़े, हिफ्ज करे, दीन की तालीम लेवे और उसके बाद स्कूल जावे, कॉलेज जावे, जहां जाना हो वहां जावे। अगर ये बच्चा सुबह सुबह के अंदर कुरान पढ़ेगा तो सुबह में उसके दिमाग पर कुरान का नूर आएगा, दिल में कुरान की बरकत आएगी, तो स्कूल कॉलेज का जो गंदा माहौल है उस गंदे माहौल का हमारे बच्चों के ऊपर इंशाल्लाह कम से कम असर होगा, कम से कम असर होगा। इसीलिए मैं उलमाए किराम को कहता हूं, सुबह में मदरसा पढ़ाओ, जिम्मेदारों को कहता हूं, आप अपने बच्चों को सुबह में मदरसे में लाइए, स्कूल ट्यूशन सब बाद में, पहले नंबर के ऊपर सुबह में कुरान की तालीम होनी चाहिए। बरसों बरस से हमारे यहां एक सिस्टम थी कि फजर बाद मदरसा शुरू हो जाता था, बाद उस्ताद लोग फजर पहले हिब्ज वाले बुला लेते हैं, बहुत अच्छी सिस्टम, बहुत अच्छा निजाम। अभी ये चंद सालों से ये गड़बड़ी वाला निजाम आ गया कि सुबह में स्कूल ट्यूशन की बला चल पड़ी, इसको खत्म करो, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। इससे हमारे बच्चे सुबह सुबह में कुरान की बरकत से महरूम हो रहे, कुरान की नूरानियत से महरूम हो रहे, इसलिए इसका माहौल बनाओ। करोगे ये काम? और दुख कब होता है कि उलमा के बच्चे, मुतवल्ली साहब के बच्चे, जिम्मेदारों के बच्चे, वो सुबह सुबह में स्कूल ट्यूशन के ऊपर जाते हैं, तब दुख होता है कि भाई हमारे बच्चे तो प्रैक्टिकली पहले मदरसे में आने चाहिए थे, अब हमारे ही बच्चे इस तरह करेंगे तो हम दूसरों को क्या तालीम देंगे। इसीलिए ये चीज बहुत अहम और जरूरी है कि हमारा सुबह का मदरसा मकतब कम से कम 3 से 3.5 घंटे का एकदम मजबूत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी तो हमें अनुभव और तजुर्बा हुआ कि जहां मदरसा मकतब 3 से 3.5 घंटे का होवे कम से कम, तो बच्चों की कुछ तालीम होती है। वरना क्या होता है कि बच्चा आया लेट और जल्दी छुट्टी लेने के लिए आ गए, 1-1.5 घंटे के अंदर उसकी कोई तालीम होती होती नहीं है। देखिए जरा अल्लाह के वास्ते इतनी बात तो सोचो कि हम ये जो दुनिया की तालीम है, जो तालीम पर सवाब का वादा भी नहीं है, उस तालीम के लिए रोजाना कितने घंटे देते हैं, कितने कलाक देते हैं, और जिस तालीम पर सवाब है कि कुरान का 1 हर्फ पढ़ो नमाज में तो 100 नेकी मिलती है। फजाइले कुरान आपके सामने, ये फजाइले आमाल की जो तालीम होती है उसमें एक हिस्सा फजाइले कुरान है। उसमें हजरत ने एक रिवायत नकल की है, जो आदमी नमाज में खड़े होके कुरान पढ़ेगा 1 हर्फ पर अल्लाह 100 नेकी अता फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ है, 10 और 9। खाली बिस्मिल्ला खड़े होके नमाज में कोई पढ़ लेवे 1900 नेकी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है। अब इतना बड़ा जो सवाब का काम है, उस सवाब के काम के लिए 1-1.5 घंटा, और जिसके ऊपर 1 नेकी भी मिलने का यकीन नहीं है, उसके लिए हम लोग 9 बजे से बच्चों को भेजते, शाम को 5-6 बजे तक हमारा बच्चा उसके अंदर लगा हुआ रहता है। ये बहुत गलत तरतीब है। कुरान की तालीम के लिए कम से कम 3-3.5 घंटे पूरी पाबंदी के साथ मदरसे का निजाम बनाओ। उलमा, मुतवल्ली, जिम्मेदार हजरात आपस के मशवरे से वालियों को जमा करो और जमा करके उनको तरगीब दो کہ یہ تعلیم مدرسے کی آپ کو قبر میں کام آئے گی، اللہ کے یہاں کام آئے گی، مرنے کے بعد کام آئے گی، اس کے لیے اپنے بچوں کا زیادہ وقت لگواؤ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں بھی یہی صبر سہن کی بات فرما رہے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی بات فرمائی، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، پھر کیا پڑھا، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اللہ تعالی کے حکم پر جمنا ہے، فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم کے اوپر جمنا ہے۔ تمام مسلمان کسی بھی طبقے کے ہو، امام ہو، استاد ہو، متولی ہو، سماج سیوک ہو، کمیٹی والے ہو، سب کو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر جم کر کے کام کرنا ہے، ہم جو کام بھی کرے اس میں کہیں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا ہو، اس کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ کوئی سنستھا چلاوے، کوئی کمیٹی چلاوے، کوئی ادارہ چلاوے، کوئی انجمن چلاوے، تو اس میں کوئی کام مسئلے کے ورودھ نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کے اوپر بہت دھیان دینا چاہیے، ورنہ ہم اچھے کام کرے اور شریعت کے خلاف کرے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر شعبے میں، ہر وبھاگ میں کام کرنے والے مسلمان پہلے مسئلہ دیکھے کہ بھائی شریعت کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا قانون کیا ہے، اور شریعت کے قانون کے مطابق کام کرے گے تو ثواب ملے گا۔ واصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، جو گنہگار ہیں، دین کے ناقدرے ہیں، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی، بات مانی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی کی، اللہ کے حکم کو مانا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ذمہ دار حضرات شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ شریعت کے خلاف کام کر ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونے لگتا ہے۔ ہمارے عبرت کے لیے یہ بات مسلوں میں لکھی ہوئی ہے، دیکھو حدیث میں آتا ہے کسی آدمی کا انتقال ہو جاوے، اس کو غسل کے لیے جب سلاوے تو بعض مرتبہ اس کے بدن کے اوپر کوئی اچھی بری چیز سامنے آتی ہے، بری چیز، مثلاً یہ کہ بدن نعوذ باللہ کالا پڑ گیا، یا بدن کے اندر اور کوئی چیز ہو گئی، موت کے بعد ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بری حالت سے میری آپ کی موت کے بعد بھی حفاظت فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو غسل دو تو اس وقت اگر کوئی بری چیز نظر آوے تو کسی کو بتلاؤ مت، اس پر پردہ ڈالو، ستاری کرو۔ لیکن وہاں شرائے حدیث نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی کھلم کھلا غلط کام کرتا تھا، کھلم کھلا بدعت میں مبتلا تھا، اور اس کو موت کے بعد کوئی بری حالت ہوئے تو لوگوں کو عبرت کے لیے بتانا چاہیے، تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور آئندہ ایسے غلط دھندے نہ کرے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ایک مرتبہ وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے دوست، یعنی میرے دوست کے دوست، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، کا انتقال کے بعد ان کے پورے بدن کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھوڑی پھنسی جیسا کالا کالا ہو گیا موت کے بعد۔ تو کہا سب لوگ تعجب میں کہ یہ کیا ہو گیا، جو چار پانچ آدمی غسل دے رہے تھے، کہ یہ کیا ہو گیا کہ بدن کالا جیسا ہو گیا اور کہیں کہیں تھوڑی پھنسی بھی نکل آئی۔ تو اس کے جوان بیٹے کو کہا کہ دیکھو تمہارے ابا کی موت کے بعد ایسا ہوا۔ تو بیٹا بیٹا ہوتا ہے، رونا آ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹے نے جواب دیا، وہ بڑا عجیب جواب ہے، سننے کے قابل بات ہے، کہنے لگے کہ میرے ابا بہت سالوں سے مسجد مدرسے کے متولی ٹرسٹی، लेकिन अब्बा के अंदर एहतियात नहीं था, यानी ध्यान नहीं देते थे। कभी जो है मस्जिद के मौज़िन साहब आए कि झाड़ू लाने की है, पैसे दे दिए। कभी इमाम साहब आए कि बल्ब निकल गया, खराब हो गया है, पैसे दे दिए। और कभी अम्मी जान ने कहा घर में सब्जी लानी है, तो भी पैसे दे दिए। कभी अम्मी जान ने कहा दवा लाने की है, तो भी पैसे दे दिए। तो कहा पैसों के मामले में एहतियात नहीं रखते थे, मस्जिद मदरसे के पैसों में से घर में भी खर्च हो जाते थे, घर के काम में भी खर्च हो जाते थे। इस गलत काम की वजह से मुझे ये डर है कि मेरे अब्बा को मौत के बाद ये बुरी हालत हुई है। अब आप सोचो कि एक आदमी मस्जिद मदरसे की खिदमत करे, ट्रेजरर बने, खजांची बने, कमेटी का जिम्मेदार बने, लेकिन हिसाब में एहतियात नहीं है, तो कितनी बुरी हालत होती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। चूंकि ये चंदे का माल है, पब्लिक का माल है, डोनेशन का माल है, इसके अंदर बड़े एहतियात की जरूरत है और अपने आप को बहुत जो है संभाल के रखने की जरूरत है। तो हम सब के लिए असल हुक्म शरीयत का है, फसबिर लिहुक्म रब्बिक वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा। अपने रब के हुक्म के मुताबिक काम करना है। अब लोग मसला पूछने आते हैं मुफ्तियों को कि मस्जिद बन रही है तो टॉयलेट बाथरूम के लिए ब्याज के पैसे चले के नहीं चले। तो मैं पूछता हूं कि तुम इतनी शानदार मस्जिद बना रहे हो, संगे मरमर लगा रहे हो, एयर कंडीशन लगा रहे हो, वो सब के लिए तुमको पैसे मिल रहे हैं और संडास बाथरूम के लिए पैसे नहीं मिलते कि ब्याज का मसला पूछने के लिए दौड़े? सोचना चाहिए कि भाई ये क्या पूछने की बात, इतना बड़ा काम हो रहा है उसके लिए इंतजाम हो गया, उसके लिए चंदा मिल गया और संडास बनाने के लिए ब्याज के पैसे ढूंढने निकले और फिर उसका मसला पूछने के लिए आए। कितनी गलत सोच है हमारी, हमारी सोच कितनी गलत हो गई आप अंदाजा लगाओ। इसलिए सूरतुद्दहर में ताकीद फरमाई, फसबिर लिहुक्म रब्बिक वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करना है। मैं ट्रस्टी हूं, मुतवल्ली हूं, खजांची हूं, इमाम साहब हूं, उस्ताद साहब हूं, अल्लाह के हुक्म पर चलूंगा तो मुझे सवाब मिलेगा। अभी एक जगह मेरा सफर हुआ था, दो हफ्ते पहले, तीन हफ्ते पहले, तो वहां मुझे अजीब कारगुजारी सुनाई कि उस्ताद क्लास में आते हैं तो क्लास में आने के बाद पहले पेपर वाँचते हैं और पेपर वाँचने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा तोबा अस्तगफिरुल्लाह, उस्ताद साहब क्लास में आके पेपर वाँचते हैं उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। का मुश्किल से दो बच्चे, दो कलाक का तो मदरसे का टाइम है और उसमें आधा घंटा तो लगभग पेपर और व्हाट्सएप में मौलाना का गुजरता है और उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने उन उलमाए किराम को कहा कि ये जो वक्त तुम पेपर में और व्हाट्सएप पे लगाते हो, इतने वक्त का पगार लेना आपके लिए गुनाह है, नाजायज है कि इतने वक्त का आप पगार ले रहे। आपको पगार किस पर मिलता है कि जो टाइम आप तालीम के लिए दे रहे। अब जो टाइम के अंदर तालीम देनी, उस टाइम में बैठ करके व्हाट्सएप पर देखते रहे, पेपर वाँचते रहे, फिर कहने लगे कि सारे उलमाए किराम जमा होकर खमण मंगवाएंगे और चाय नाश्ता करेंगे। मैंने कहा घर में बीवी ने क्या किया कि मदरसे में आके चाय खमण खावे? ये वक्त जो आपका मदरसे का है, ये अमानत है, अमानत है। इसके अंदर, इसके अंदर कोई भी काम तालीम के अलावा करोगे तो अल्लाह के यहां गुनहगार बनोगे और अल्लाह ताला के यहां इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उम्मत के मासूम मासूम बच्चे आते हैं हमारे पास, वक्त देकर के माँ बाप भेजते हैं, सुबह में कब से माँ बाप उनको उठाकर तैयार करके भेजते हैं। इनकी एक एक मिनट कीमती है कि इन बच्चों को हम सही दीन की तालीम देवे, सही कुरान सिखावे, कलमा सिखावे, नमाज सिखावे, हुजूर की सुन्नत और सीरत सिखलावे। भाई ये जो हमारे लोकल मदरसे हैं जिसको हम मकतब कहते हैं, महल्ले के मदरसे, गांव के मदरसे, یہ محلے کے مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان بن کے کیسی زندگی گزارنی وہ وہاں اس کو سکھا دیا جائے. ایک مسلمان کو مسلمان بن کے کیسی زندگی گزارنے کی وہ وہاں سکھا دیا جائے, صحیح قرآن سکھا دے وے, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھا دے وے, وہاں ان کو عقیدے بتلا دے وے, سنت دعائیں یاد کرا دے وے. یعنی 30-35% اس کو مولوی بنا دے وے اور 100% مسلمان بنا دے وے. یہ مکتب کا مقصد ہے کہ 30-35% مولوی بن جاوے اور 100% مسلمان بن جاوے. یہ ہمارے مکتب کا سسٹم ہونا چاہیے. اس طرح کا نظام بناؤ کہ صحیح قرآن سکھاوے, سنت دعائیں سکھائے, کلمے سکھائے, سیرت پاک سکھاوے, اللہ کا دین سکھاوے. یہ ہمارے مدرسوں اور مکتب کے اندر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بچہ مکتب کی تعلیم حاصل کرے گا, صحیح تعلیم حاصل کرے گا, وہ بڑا ہو کر کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن مرتد نہیں ہو سکتا, کبھی مرتد نہیں ہوگا. اگر مرتد ہونے سے بچانا ہے تو ان بچوں کو اسلامی ماحول کے اندر صحیح مدرسے کی تعلیم دو. اور یہ صحیح تعلیم کے لیے متولی, استاد, والی تینوں مل کر کے فکر کریں گے تو صحیح تعلیم ہوگی. اکیلے مولانا کا بھی کام نہیں, اکیلے متولی کا بھی کام نہیں, اکیلے استاد کا بھی کام نہیں, تینوں مل کر کے. کہ والی لوگ ٹائم سے پہلے بچوں کو مدرسے میں پہنچاوے اور چھٹی کے بعد لینے کے لیے آوے, رات کو گھر پر سبق یاد کرنے بٹھاوے, استاد صاحب ٹائم کے اندر فل ٹائم صحیح تعلیم دے وے, اس وقت کوئی کام ادھر ادھر کا نہیں. اور جو ہے متولی حضرات ان استادوں کا خیال رکھے, ان استادوں کی ضرورت کی طرف دھیان دے وے. ان استاد کو تعلیم کی لائن سے کوئی مدد کی ضرورت ہو تو تعلیم کی لائن سے مدد کرے, اور ان کی زندگی کی لائن کی کوئی تکلیف ہو اس کے اندر مدد کرے. یہ تینوں آپس میں ملیں گے, متولی, استاد, بچوں کے والی, تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے بچے مکتب میں مدرسے میں آ کر زوردار اسلامی تعلیم حاصل کر کے جائیں گے اور ان کی زندگی بن جائے گی. اسی لیے بہت ضروری ہے آج کے گندے ماحول کے حالات میں کہ مدرسہ مکتب ہمارا پاور فل بنے, بہترین تعلیم والا بنے, عمدہ تعلیم والا بنے. تو انشاءاللہ العزیز ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اور یہ بچے مرتد ہو جانے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے, اور اس کے اندر ثواب ہم کو ملے گا, ثواب ہم کو ملے گا. بعض جگہوں کے اوپر ہم نے کارگزاری سنی تو حیران رہ جائے کہ مکتب کے استاد جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑے ہیں یہ. یہاں آپ کے پڑوس میں ایک بستی میں رمضان سے پہلے آنا ہوا تھا حفظ کی مجلس میں, موگر گاؤں کے اندر. تو موگر گاؤں کے ایک مفتی صاحب ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں, مشکات شریف پڑھاتے ہیں, شمائل ترمیزی پڑھاتے ہیں. تو موگر کے مفتی صاحب ہمارے یہاں وہاں سورت ان میں پڑھاتے ہیں. تو یہاں آیا تو پتا چلا کہ ان کے مکتب کے جو استاد ہے بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے, پہلے وہ سائیکل پر آتے جاتے تھے, وہ استاد نے ان کو مکتب میں پڑھایا. پڑھانے کے بعد بچے کو سمجھا بجھا کر کے گجرات کے ایک دارالعلوم میں لے جا کر کے داخلہ کرایا. ماں باپ کو تو کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی, سمجھ نہیں ہوتی, استاد ہی لے کر کے گئے. اور وہ استاد سنا رہے تھے کہ میں اس کا بستر سر پہ اٹھا کر بس اسٹاپ تک گیا, پھر بس میں بیٹھ کر کے وہ مدرسے گئے, اور جو ہے بس اسٹاپ سے اتر کر مدرسے تک پوٹلے بسترے اٹھا کے لے کر گئے استاد, اور اس بچے کو مدرسے میں داخلہ کرایا. کس کو کیا خبر کون سا بچہ کل شیخ الحدیث بن جائے, کون مفتی بن جائے, کون عالم دین بن جائے. تو کہا آج وہ بچہ, وہ استاد تو بیچارے مکتب کے, وہ بیچارے کیا کتاب پڑھائیں گے, لیکن ان کی فکروں سے, ان کی محنت سے وہ بچہ مفتی بن گیا اور آج حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہا ہے. تو ثواب کس کو ملے گا؟ ان کے استاد کو, جنہوں نے مکتب سے ان کی تیاری کی. یہ فکر ہم प्राइमरी बेस पे करेंगे तो इंशाल्लाह बस्ती के अंदर माहौल बनेगा और दीन की अच्छी तालीम का माहौल आएगा। अल्लाह सुबहानहू व ताला इन बातों के ऊपर हम सबको तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। अगर बस्ती में अच्छा माहौल कायम करना है, बेहतरीन तालीम का माहौल कायम करना है, तो मुतवल्ली और जिम्मेदार उस्तादों के साथ बैठे और बार बार उस्तादों से मशवरा करे कि आपको तालीम की लाइन में क्या तकलीफ है हमें बताओ, हम आपका सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। वालियों को बुलाओ और वालियों को समझाओ कि कुरान की दीन की तालीम की क्या अहमियत है, अजमत है। उस्ताद, वाली, मुतवल्ली तीनों मिलजुल करके फिक्र करेंगे तो फिर ये हमारे बच्चे कुछ पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे और हमारी आने वाली नस्ल, न्यू जनरेशन, आने वाली पीढ़ी वो 100% दीन और ईमान के ऊपर कायम होगी। आज के गंदे माहौल में हम सबको ये फिक्र करना बहुत जरूरी है। इसका जोरदार माहौल बनाओ मकामी तौर पर और जो है बच्चों की बेहतरीन इस्लामी तालीम और तरबियत हो उसकी कोशिश करो। अल्लाह सुबहानहू व ताला हम सबको आफियत में रखे, अल्लाह हमें आफियत में रखे, अल्लाह हर हमेशा आफियत में रखे। लेकिन दीन के काम के अंदर हालात तो आते ही है, दीन के काम में हालात आते ही है, उसके ऊपर क्या करना है, सबर। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू। वो करीमा तो आप लोगों ने पढ़ी है, ये मौली लोगों ने करीमा फारसी अव्वल के अंदर, तो करीमा का जो पहला शेर है, करीमा बेबख्शाए बरहाले माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा। तो अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर गुजरे है ने, जज भी थे, बड़े शायर भी थे। तो अकबर इलाहाबादी ने करीमा के इस पहले शेर में तजमीन की है। तजमीन यानी शायर के शेर में कुछ रद्दो बदल। उन्होंने उलमाए किराम के लिए बहुत अच्छी तजमीन की, कहा करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा, करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा के हस्तम असीरे कमीटी व चंदा। अकबर इलाहाबादी ने ये तजमीन की हजरत, तो ये हस्तम असीरे कमीटी व चंदा ये तो लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। मैं हमारे दौरे हदीस तकमील करने वाले तलबा को कहा करता हूँ कि भाई मदरसे में रह के सुधर जाओ वरना बाहर जाके जाहिल मुतवल्ली सुधारेंगे तुमको। मैं कहता रहता हूँ उनको, मदरसे में उस्ताद के मातहत रहकर शफकत मोहब्बत में कुछ बन जाओ उस्तादों की शफकत में, वरना बाहर जाहिल मुतवल्ली तुम्हारी इसलाह करेंगे। एक मरतबा जो है एक मुतवल्ली साहब हमारे उस्ताद हजरत मौलाना इब्राहिम साहब पटनी दामत बरकात हमको कहने लगे, वल साहब आप आए तो हमारे इमाम साहब को कुछ नसीहत कर जाओ नी। तो कहा क्या नसीहत करूं तुम्हारे मौलाना को, तो कहा वो जोहर असर में पढ़ते ही नहीं है, जोहर असर में पढ़ते ही नहीं है। तो कहा कैसे तुमको पता चला कि जोहर असर में पढ़ते नहीं है, तो उनके यहाँ मस्जिद का सिस्टम क्या था कि इधर से रास्ता था, ये साइट वाली तरफ से यानी किबले की तरफ से। तो कहा हम लोगों की तो रकात रोज जाती है, तो हम जब आते हैं ना मस्जिद में तो आगे की तरफ से, तो देखते देखते आते कि इमाम साहब के होठ हिलते हैं कि नहीं हिलते हैं। देखिए उम्मत का हाल, कहाँ कहाँ आपकी किन किन चीजों पर वो नजर रखेंगे। तो कहा हमारे मौल साहब के होठ हिलते ही नहीं है, इनको नसीहत करके जाओ कि जोहर असर में कुछ पड़े। तो हमारे उसका जो है बहुत जौकील है, उन्होंने कहा आप पगार कितना देते हो, तो कहा इमामत के हम लोग जो है 1700 रुपये पगार देते हैं और बाकी मकतब का पगार मिलता है। तो मौलाना ने कहा कि 1700 में तो है ना उठबैठ करावे ने वो भी गनीमत है, 1700 में तो खाली उठबैठ कराए वो भी गनीमत है। जो लोग जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए तो उनको भी महीने की भी 5000 रुपये देनी पड़ती है। तो मौलाना खाली उठबैठ करावे 1700 में वो भी शुक्रिया अदा करो। तुम चाहो कि मौलाना पढ़े तो पगार तुमको बढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे मौलाना, वरना तो उठबैठ ही कराएंगे। तो ये है कि भाई ये चीजें लतीफा है लेकिन हमारी जिंदगी में बड़ी इबरत और नसीहत की है कि हम लोगों को दीन का काम करना है, दीन का काम करना है। अल्लाह आफियत में रखे लेकिन हालात आए तो सब्र के साथ काम करना है। जब आदमी जमता है तब जाकर के कुछ नतीजा आता है, ऐसे नतीजा निकलता नहीं है। रात में मैं मौलाना शमशुल हक साहब को पूछ रहा था, क्या नड़ियाद में आपके बयान के कितने साल हुए, तो कहा 40 साल पूरे होने आए। आप अंदाजा लगाओ, आज हमारे बाज उलमाए किराम को कहा जाए कि भाई बयान कर दो तो क्या कहते हैं, तैयारी नहीं की है। अरे भाई, दीन की दो बात सुना देने की, उसमें क्या बहाना करने का कि तैयारी नहीं की, इसमें क्या बहाना करने का कि गला खराब है, आवाज बैठ गई है। दीन की बात अल्लाह के नाम के ऊपर खड़े होके इखलास से सुना देने की, 40 साल आदमी कोई निभावे कोई आसान काम है? ये जो है बड़ा हिम्मत, ये इसी की तफसीर है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरु, जमना पड़ता है तो जाकर के उसका कुछ नतीजा निकलता है, रिजल्ट सामने आता है। इसीलिए समाज की सेवा, कौम की खिदमत, इमामत, मकतब, मदरसा, तमाम काम के अंदर हमेशा एक बात याद रखो कि अल्लाह के लिए करने वाले बनो, अल्लाह के लिए। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए ये काम करना है। अगर दिल में ये ख्याल आया कि मैं मुतवल्ली, प्रेसिडेंट, प्रमुख, ट्रेजरर बन जाऊं, ये होद्दा मुझे मिल जावे, अगर ये नीयत आई तो हमारा सारा काम बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उस पर सवाब नहीं मिलेगा। जो काम भी करो, इमामत कराओ, बच्चों को पढ़ाओ, मुतवल्ली बनो, ट्रस्टी बनो, अल्लाह के लिए बनो। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, आप अपनी नीयत सोच लो कि हम अल्लाह के लिए करते हैं तो ठीक है, बाकी नाम करने के लिए करते हो तो उसी दिन छोड़ देना चाहिए। मैंने एक मर्तबा, मेरे बहुत से बयान मुतवल्लियों में होते हैं, यूट्यूब पर आते हैं और उसकी क्लिपें भी बहुत चलती है चैनलों के ऊपर भी। तो एक मर्तबा मैंने एक जगह बयान किया तो एक मुतवल्ली साहब, जोहर के वक्त बयान था और असर में मेरे बाजू में आके वजू करने बैठ गए, 20-25 साल पुराने मुतवल्ली। मुझे कहने लगे कि आज आपका बयान सुना तब से मुझे तो हालत खराब हो गई है, कि आपने तो बहुत बड़ी बात बताई कि मुतवल्ली की तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो कहा मैं क्या करूं, मुझे तो अभी तक बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा मुतवल्ली साहब, असर की नमाज पढ़ के आप राजीनामा लिख के दे दो, मुझे उनके हालात मालूम थे इसलिए डायरेक्ट मशवरा दे दिया। मैंने कहा असर पड़ गए, आज पहला काम ये करो कि राजीनामा लिख के दे दो, आपके लिए भलाई इसी के अंदर है। और मैं डिटेल में आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस आप पूछा इसीलिए कहा, वरना मैं पर्सनल कहता नहीं हूँ, माइक स्टेज पर सब कुछ कह देता हूँ, पर्सनल आदत नहीं, लेकिन पूछा इसलिए कह दिया। तो इस तरीके का मामला है कि आदमी अपनी नीयत सोचे, मैं क्यों कर रहा हूं, अगर अल्लाह के लिए है, अल्लाह के दीन के लिए है, आखिरत के लिए तो करो, वरना खाली नाम के लिए मत करो हर काम को। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इसीलिए चिल्ला 4 महीना 3 दिन लगाने वाले भी पहले नियत सोच ले, मैं क्यों जमात में जाता हूं। ये फजर बाद जो 6 नंबर होते हैं ना, उसमें इखलास का नंबर बेचारा बहुत बाद में आता है। हमारे साथी लोग ईमान के नंबर को इतना खोलते हैं कि इशराक का वक्त आ जाता है, इखलास के नंबर को खोलने का नंबर ही नहीं आता है। ये इखलास का नंबर खोलने की जरूरत है कि 4 महीने 40 दिन 3 दिन हम जमात में निकले, रोजाना दो जो है तालीम करे, हफ्ते के 2 गश्त करे, तो उससे पहले कभी नियत सोचते हो कि नहीं, क्यों कर रहे हैं? क्या हम रूटीन के अंदर रस्म में कि मैं जो है 2 तालीम कर रहा हूं और 2 गश्त कर रहा हूं और साल का चिल्ला देता हूं, इसलिए रूटीन का काम करना है, रस्म के तौर पर करना है? बिल्कुल मत करो, नियत सोचो अल्लाह के लिए करता हूं तो जरूर करो कि अल्लाह के लिए। बुखारी शरीफ की पहली हदीस में क्या फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी नियत होगी ऐसा अल्लाह के यहां से सवाब मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के लिए करने की आदत डालो, कोई भी दीन का काम, तबलीग हो, दावत हो, उस्ताद हो, इमामत हो, कौम की खिदमत हो, अल्लाह के लिए करने की आदत डालो तो उसमें सवाब होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। اللہ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے وے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اشراق کا وقت ہو گیا ہے، چار رکعت اشراق چاش کی پڑھ کے جائے. دیکھو مسئلہ بتا دوں کہ اشراق اور چاش حضرات محدثین کے یہاں ایک ہی نماز ہے، حضرات صوفیہ کے یہاں الگ الگ ہے. اس لیے مکروہ وقت نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس میں اشراق چاش دونوں نیت کر کے پڑھ لیا کرو، تو دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور جو ہے جس آدمی کو روزی کی تکلیف ہو وہ تو روزانہ اشراق چاش پڑھنے کی عادت بنائے پھر اپنی روزی پر جائے، تو انشاءاللہ عجیب برکت وہ دیکھے گا. تو اشراق چاش کا وقت ہے، اور ہماری یہاں نفل نماز میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں. تو اشراق کی نیت، چاش کی نیت، صلاۃ الحاجہ کی نیت، صلاۃ التوبہ کی نیت، صلاۃ شکرانہ کی نیت، تحیت المسجد کی نیت، نیا وضو کیا ہے تو تحیت الوضو کی نیت، ساری نیت کے ساتھ چار رکعت پڑھ ڈالو تو انشاءاللہ یہ سارا ثواب ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. اور روزانہ اس کی عادت بنا لو، روزانہ اس کی عادت بناؤ، مزاج بنا لو کہ ہم لوگ اشراق چاش کی پابندی کریں. انشاءاللہ اس میں بڑی خیر اور بڑی برکت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث میں صرف دو رکعت آئی ہے، لیکن چار رکعت پڑھو، چھ پڑھو، آٹھ پڑھو، یہ افضل طریقہ ہے. تو اس پر ہم عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.